ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
चिड़िया उड़ करके पेड़ के ऊपर बैठ गई. चिड़िया और पेड़ का संयोग हो गया, किंतु शब्द नहीं सुना. एहे नोदना संयोग कहते. यहां जो हमारा प्राण आके ये आठ स्थान में जो टक्कर मारता है, अभिघात संयोग बोल के, तो अलग अलग स्थान में टक्कर मारने से वही जो प्राण है वाणी के द्वारा बाहर आता है, वही शब्द रूप से आ रहे. परमात्मा ने कितना बड़ा विज्ञान बनाया हमारे अंदर, हम विचार नहीं करते, बाहर के विज्ञान में खो जाते. ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया. वही जो प्राण आके शब्द रूप से बाहर आ रहे, इसलिए जो वाग इंद्रिय के द्वारा हम बोलते उसको वाणी कहते, उसका नाम रखा वाग इंद्रिय. जो अलग अलग जो टक्कर मार रहे और वो बाहर आने से शब्द हो जाता है, इसलिए यहां बता रहे वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, और मेरा मन है वाणी में प्रतिष्ठित हो. और एक जगह में ये भी बता दिया, वाणी को जाया बता दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, मन को यजमान बता दिया है. पांक्त कर्म एक आता है, तो इसलिए मन है यजमान है और वाणी है उसकी पत्नी माना है. तो मन और वाणी के द्वारा ही आप वेद का आलोड़न कर सकते हैं. उपनिषद का आलोड़न करने के लिए मुख्य दो चीज है, बाकी भी है, आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, किंतु मुख्य ये है, क्योंकि वाणी के द्वारा बता रहे गुरु और स्वयं हम मन के द्वारा उसका अनुसंधान कर सकते हैं. तो मन और वाणी के द्वारा ही मंथन कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो मन और वाणी से परे है, अवांग मनस गोचरा, तो भी वो मन और वाणी का ही विषय बनता है, क्योंकि वेद भी वाणी है परमात्मा की, वो वेद उसको विषय करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. और हम लोग भी जानते हैं किससे, मनसा एव आप्तव्य, मन से ही हम पहचान सकते हैं, मन से ही जान सकते हैं. इसलिए हम दो को अधिकार है, मन और वाणी, अन्य इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया. और मन और वाणी ग्रहण करने से सारे उसके अंतर्भूत हो जाते, जैसा हाथी के पैर के अंदर सभी पैर आ जाते. इसलिए यहां बता रहे वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, अर्थात मेरी वाणी वागिंद्रिया और मन एक दूसरे का अनुकूल हो जावे. जैसा कोई घर चलाने के लिए पति और पत्नी एक परस्पर अनुकूल हो तो घर चलेगा, और दोनों में एक यदि विरुद्ध हो तो घर नहीं चलेगा. छांदोग्य उपनिषद और अन्य में कहा दिया है, ये दो पहिए हैं, संसार रूप रथ चलने का दो पहिए. तो एक पहिया यदि टूट गया, एक पहिया से कैसा चलेगा संसार रथ, इसलिए दोनों चाहिए. इसलिए यहां वेद रूप जो रथ है, वेद एक प्रकार से रथ माना है, उसको पुरुष भी माना है. वेद रूप रथ चलने के दो पहिए हैं, मन रूप यजमान, वाणी रूप जाया पत्नी. अभी मन और वाणी मेरी परस्पर विरुद्ध हो, जैसा वहां पति पत्नी में विरुद्ध हो घर नहीं चलेगा, तो इसी प्रकार यहां वाणी और मन में परस्पर विरुद्ध हो एक पहिया टूट गया तो वेद कैसा चलेगा, वेद में बताया हुआ तात्पर्य कैसा मालूम पड़ेगा। इसलिए यहां बता रहा है एक दूसरे का अनुकूल हो जावे, मन के अनुकूल वाणी हो, वाणी का अनुकूल मन हो। कहने का तात्पर्य जो मन सोच रहे विचार कर रहे वाणी वैसा ही बोले, और जैसा घर में पति विचार कर रहे पत्नी वैसा ही व्यवहार करे, और पति कुछ विचार कर रहे पत्नी कुछ कर रहे हो गया वहां खटपट। तो इसलिए यहां बता रहे परस्पर अनुकूल हो जावे एक दूसरे का, तभी ये वेद मतलब वेद प्रतिपाद्य जो तत्व है उसको हम ठीक ठीक से पहचान सकते हैं, अथवा पहचानने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और इसमें यदि एक भी टूट गया, पहचानना तो दूर बात है, पहचानने के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बता रहे एक दूसरे में प्रतिष्ठित हो। आविर्वीर्म एधि, आवि कहते हैं प्रकाश, प्रकाश भी दो प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में स्पष्ट बता दिया है एक भौतिक प्रकाश। भौतिक प्रकाश का मतलब अभी जो मैंने बता दिया, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा पंचीकृत हो गया। पंचीकृत का मतलब ये है कोई वस्तु है, मान लीजिए अपंचीकृत पृथ्वी है, उसको दो भाग में विभक्त कर दीजिए। दो भाग में बोल दो अपना मन से ही करना, पृथ्वी को नहीं कर सकते, ये विचार है। तो दो भाग में विभक्त मान दीजिए, उसमें जो पहले वाला भाग है उसको पुनः चार भाग में कर दीजिए। तो चार भाग करने से आपका हो गया एक बट्टा आठ, एक बट्टा आठ, एक बट्टा आठ, ये हो जाएगा। वैसे ही सभी का कर दीजिए, जो आदि पृथ्वी है उसमें वो एक बट्टा आठ अन्य चारों को मिलाते जाइए। आकाश का एक बट्टा आठ, वायु का एक बट्टा आठ, तेज का एक बट्टा आठ, जल का आधा पूरी हो गई। तो आदि पृथ्वी है और एक बट्टा आठ, एक बट्टा ये चार अंश रहेगा। तो अभी जो पृथ्वी में है पांच अंश आ गए, पहले अकेली पृथ्वी थी उसी का नाम है अपंचीकृत, कोई मिलावट नहीं किया। अभी उसमें एक बट्टा आठ, एक बट्टा आठ मिलाकर उसको पूर्ण किया आपने, तो वहां पृथ्वी क्यों व्यवहार करते हैं आप? आकाश व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उसमें आकाश भी है, वायु भी है, वायु क्यों व्यवहार नहीं करते हैं? आप किसी से पूछे ये व्यक्ति सज्जन है, क्यों बोलते आप सज्जन? क्या उसके अंदर दुष्ट गुण नहीं है? अवश्य है, दुष्ट गुण केवल परमात्मा में नहीं होगा, मनुष्य यदि है उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। तो भी आप सज्जन क्यों बोल रहे हैं उसको? अर्थात अधिक से अधिक उसके अंदर सद्गुण है, 60% हो 70% हो सद्गुण है। दुर्योधन को हम दुष्ट बोलते हैं, क्या उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं? कर्ण को ऐसा मित्रता मानते थे, तो उसके अंदर भी है, दुर्जन के अंदर भी सद्गुण है, तो भी हम दुर्जन क्यों बनते? अर्थात दुष्ट गुण उसमें अधिक है। वैसा ही पृथ्वी में पृथ्वी का अंश अधिक है, आधा है, बाकी सब एक बट्टा आठ है, इसलिए उसको हम पृथ्वी कहते हैं। विशेषस्तु तद्वादा तद्वादा, ब्रह्मसूत्र में बता दिया, भगवान वेश व्यास जी समाधान किया, क्योंकि पृथ्वी में पांचों है उसको पृथ्वी क्यों कहते हैं? तो उसका विशेष अंश को लेकर, अधिक अंश को लेकर व्यवहार होता है। तो पंचीकृत होने के बाद उससे जो है सूर्य भी पंचीकृत है, चंद्रमा भी पंचीकृत है, तो उसको हम प्रकाश मानते। ये प्रकाश है भौतिक प्रकाश, भूतों का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य भी बना है पंचीकृत से, चंद्रमा भी पंचीकृत से बनी है, जो अग्नि से हम रोटी बनाते वो भी पंचीकृत है, अपंचीकृत अग्नि को हम नहीं देख सकते, उसको भी हम प्रकाश मान रहे हैं। सूर्य प्रकाशित कर रहे, लाइट प्रकाशित कर रहे, वास्तव में प्रकाशित नहीं कर रहे। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, घट को हम देखते हैं, वहां हमारी आंख है, प्रकाश है और देखने वाले आप हैं। दीपक को आप देखते हैं, वहां एक हट गया, आंख है और आप है, कोई दूसरा प्रकाश नहीं। स्वयं अपने आप को देखते हैं, वह आंख भी नहीं प्रकाश भी नहीं। तो घट और दीपक को आप देख रहे हैं, तो घट को देख रहे आंख से आप कहते दीपक उसको प्रकाशित कर रहे, दीपक प्रकाशित नहीं कर रहे। वो दिन भी बताया था मैं, दीपक केवल आपका अंधकार को हटा रहे, वो अंधकार का विरोधी है, प्रकाशित नहीं कर रहे। प्रकाशित जो कर रहे वही चैतन्य ही घट को प्रकाशित कर रहे, चैतन्य ही उस प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहे। आप है तभी घट को देख रहे, आप है तभी आप प्रकाश को देख, आप प्रकाशित कर रहे, दीपक नहीं। किंतु आप दीपक को देख रहे, वह अंधकार है नहीं, इसलिए उसको अंधकार को हटाने के लिए कोई दूसरा दीपक की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए वास्तव में ये प्रकाशित नहीं कर रहे, केवल अंधकार का विरोध मात्र है। इसलिए हम बोलते हैं सूर्य प्रकाशित कर रहा है और दीपक प्रकाशित कर रहे करके विचार करने पर वो प्रकाशित है। श्रुति स्वयं बोल रहे तमेव भान्तम अनुभाति सर्व, वही प्रकाशित कर रहे। तो भी व्यवहारिक दृष्टि से हम मानते इसको भौतिक प्रकाश करके, लोक व्यवहार को लेके मानते भौतिक प्रकाश है करके। तो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है भौतिक प्रकाश, और एक है अभौतिक प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश है। उसी को यहां आवी शब्द से बता रहे, वो जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब किसी प्रकाश से प्रकाशित होने वाला नहीं, सारे प्रकाश को भी वो प्रकाशित करने वाला है। वो प्रकाश है तभी हम अग्नि को भी प्रकाशित कर रहा था देख रहे, वो प्रकाश है तभी सूर्य का भी ज्ञान हो रहे। उसी को यहां बता रहे आवि मतलब स्वयं प्रकाश परमात्मा, उसी को ही परमात्मा कहा दिया। इसलिए यहां बता रहे हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, तू मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, प्रार्थना कर रहे, तू मेरे सामने प्रकट हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं जैसा कोई रूप धारण करके प्रकट हो जाओ, यह प्रकट होने का मतलब मेरे अंदर जो आवरण पड़ा है उस आवरण के कारण आपको मैं होने पर भी नहीं देख रहा हूं। आवरण कौन है? मैं पहले दिन बताया था ये अज्ञान है, वो दुख का कारण है। इसलिए जो आवरण है उसको हटाने का प्रयत्न करो और आवरण हटाने के लिए मुझे सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि प्रार्थना करने से प्रार्थना में एक सामर्थ्य है। आप प्रार्थना तो भगवान से कर रहे हैं, किंतु उस प्रार्थना के द्वारा आपके अंतकरण में एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है। भगवान कुछ नहीं करता है, भूल है, किंतु भगवान के निमित्त से हम भगवान को पुकारते हैं, हमारी एक वृत्ति बनती सात्विक। तो सात्विक वृत्ति जैसा जैसा बनेगी आपका अंतकरण शुद्ध होगा। ये अंतकरण शुद्ध होने के लिए निमित्त कौन बन गया? भगवान। इसलिए भगवान को हम पुकारते, न तो भगवान आके आप अंतकरण का दोष हटाएंगे, ऐसी बात नहीं, दंड मार के वो बाहर थोड़ा है, आपके अंदर है। इसलिए यहां प्रार्थना कर रहे, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, अर्थात मेरे अंदर पड़ा हुआ जो आवरण है उसको हटाने के लिए आप प्रयास करो। इसी का नाम है ईश्वर कृपा कहते। और आगे बता रहे, वेदस्य मा आनिष्टः, वेदस्य अर्थात जो वेद भगवान है उसके दो पहिए हैं, मैंने पहले कहा दिया था, एक मन और वाणी। क्यों ऐसा है दो पहिए? वाणी के द्वारा उस वेद को आप उच्चारण करते हैं, मन के द्वारा उसका अनुसंधान करते हैं। अभी आप लोग सुन रहे हैं किससे? वाणी से। वक्ता जो वाणी से बोल रहे हैं तभी सुन रहे हैं आप, और सुना हुआ आप अनुसंधान करेंगे मन से। तो इसलिए दोनों काम कर रहे, वाणी और मन, इसलिए दो पहिए माना जाता है। वेद का उच्चारण हो अथवा गीता का उच्चारण, हम किससे? वाणी से करते हैं, गूंगा उच्चारण नहीं कर सकता है। और उच्चारण करने के बाद वैसे ही मन के द्वारा हम चिंतन भी करें। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, वाणी के द्वारा केवल उच्चारण करने मात्र से स्तुति हो जाएगी, और उसी को ही यदि अर्थ के साथ अनुसंधान करेंगे तो उपासना हो जाएगी। गुणा कथनम, अर्थात कथन बोल तो बोलना, किसके? परमात्मा के गुणों के। तो परमात्मा का गुणों का कथन हम किससे कर रहे हैं? वाणी से कर रहे हैं, ये स्तुति हो जाती। और गुण चिंतनम, चिंतन तो वाणी से नहीं होता है, वाणी जो बोल रही गुणों का, मन के द्वारा आप उसको चिंतन करते। तो गुण चिंतन हो गया उपासना, और गुण का जो कथन हो गया वो स्तुति मानी जाती। इसलिए यहां बता रहे, जो वेद के दो पहिए है, वाग और मन, हे वाग और हे मन, तुम दोनों मेरे प्रति वेद को लाओ। वेद को लाओ, एक ऐसा बोल रहे, वाणी और मन से बोल रहे, वेद को लेके आओ। कोई किताब उठा के लाएगा क्या वो? और किताब तो वेद नहीं है, जो हम जो पुस्तक है ये उपनिषद नहीं है। उपनिषद अलग है, ये तो शब्द राशि है, ये तो वाचक है। ये क्या कर रहे? आपको उपनिषद तत्व को बता रहे। जैसा कोई बच्चों को हम सिखाते हैं ऐसा लिखते हैं, रे का अ है करके, वो आकार नहीं, वो लिपि मात्र है। हम संस्कृत में ऐसा लिखेंगे और दूसरे भाषा में दूसरा लिखेंगे, वो आकार नहीं है, वो लिपि है। उस लिपि ने आपको क्या दिखाया? आकार का बोध करवाया। तो आकार का बोध करवा रहे लिपि, इसलिए इसको भी आकार माना, वर्णमाला माना, किंतु ये आकार आदि नहीं। वैसे ही उस उपनिषद तत्व को ये बोध करवा रहे शास्त्र। उपनिषद तत्व है, अलग है, उसको ये बोध करवाने के कारण शास्त्र को भी उपनिषद कहा दिया। एक गौण नाम है, मुख्य नहीं, गौण नाम भी प्रयोग होता है। इसलिए यहां उपनिषद को अर्थात वेद को लावो बोल रहे हैं। तो वेद को लावो इसका मतलब ये तात्पर्य है, हे मेरा मन और हे मेरा वाणी, तुम निरंतर उस वेद का अर्थात वेद प्रतिपाद्य जो तत्व है उसको ही बोलो, उसका ही चिंतन करो। यही वेद का लाओ, और वेद का लाना नहीं। तो वेद में प्रतिपाद्य जो तत्व है, वेद में पहले ही बताया था, कर्म भी बताया, उपासना भी, ज्ञान, किंतु मुख्य रूप से ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान है सारे दुखों के निवृत्ति के कारण। इसलिए बता रहे, प्रार्थना कर रहे वाणी और मन से, हे वाक और हे मन, तुम दोनों मेरे प्रति जो वेद में बताया हुआ जो तत्व है मेरे अंदर लाओ, तो उतरने का प्रयास करो, अर्थात मेरे अनुकूल हो जाओ। हे मन, तुम संसार का चिंतन मत करो। हे मन, तुम जो चिंतन कर रहे वैसे ही वाणी भी बोले, वाणी भी संसार का वचन ना बोले। केवल यदि बोलना हो वेद प्रतिपाद्य तत्व ही बोले, और शास्त्र में बताया हुआ तत्व का ही चिंतन करे, यही वेद लाओ, ये तात्पर्य। आगे बता रहे, जो मैं श्रवण कर रहा हूं वो मेरा परित्याग ना करे। अनेना अदितेनहा श्रुतम में मां प्रहाशी, जो मैं सुन रहा हूं गुरुजनों से, मां प्रहाशी मुझे त्याग ना करे। त्यागने का मतलब भूलना। हम श्रवण तो बहुत करते हैं, किंतु श्रवण क्या, हमें सब भूल जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है, हमारे मन में वैषयिक अर्थात विषय का जो संस्कार प्रबल है, इसलिए सुनने के बाद भी भूल जाते हैं। जैसा हम वेदांत सुनते हैं, सुनते समय में बहुत अच्छा लगता है, ठीक ठीक लग रहा है, बाहर जाते समय दोबारा वो भूल क्यों जाते हैं? जैसा मान दीजिए कोई तालाब में काई जमी है खूब, संस्कृत में उसको बोलते शवाला बोलते हैं, खूब जल के ऊपर जमी है एकदम परात काई, आपने थोड़ी सी हटा दिया, जल का दर्शन तो हो गया आपको, बहुत सुंदर जल है अंदर, उठा के पी लीजिए, थोड़े क्षण में दोबारा वो सही ढक दिया। तो जल का दर्शन तो हो गया, पुनः वैसे ही आवृत, वैसे ही हमारे अंदर जो काई पड़ी है, परात पड़ी है, वेदांत क्या कर रहे है, वो काई को क्षण भर के लिए हटा रहे, सुनते समय में यहां से बाहर जाते हैं तुरंत पुनः परात आ रहे उसके ऊपर। उसके लिए शास्त्र बोलते हैं बार बार आसुप्तेर आमृते नयेर वेदांत चिंतया, जब तक हमारी निद्रा नहीं आती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती तब तक। ऐसा कोई नहीं, जैसा कोई कर्म हो उपासना हो उनके लिए नियम है, कर्म आप सभी जगह में नहीं कर सकते। जैसा शास्त्र ने बताया पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, सब नियम है कर्म में, उपासना में भी नियम है, किंतु वेदांत चिंतन में कोई नियम नहीं है, जब भी कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए हम पुस्तक देख रहे अभी, क्या उसके लिए कोई नियम है? आंख खोल दिया आपने, देख गया, कोई यम नियम नहीं उसके लिए। प्राणायाम करने से आपको पुस्तक दिखेगा, समाधि लगाने से पुस्तक दिखेगा, ऐसी बात नहीं। आपने आंख खोल दिया, पुस्तक का दर्शन हो। वैसे ही अपने स्वरूप को जानने के लिए कोई नियम नहीं, किंतु यदि प्रमाण हमारे पास हो, पुस्तक सामने है, हम आंख ही नहीं खोल दिया, दर्शन कहां से होगा? वैसे ही प्रमाण यदि हमारे है, प्रमाण मतलब वही आगम प्रमाण, अखंडाकार, तो अवश्य होगा, उसके लिए कोई नियम नहीं। तो कर्म और उपासना के लिए तो नियम होता है, ज्ञान के लिए कोई नियम। घूमते हुए चिंतन कर सकते हैं, बैठते हुए भी चिंतन कर सकते हैं, हां कुछ काम ऐसा होता है उसमें नहीं होता है बुद्धि का। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।